नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के विशेष मुद्दों पर भारत के विचार रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए लोगों से कौशल और शक्ति का इस्तेमाल करने की अपील की। उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों ने श्रम संहिताओं को सराहा, कहा ये संहिताएं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया, 4 संदिग्ध गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में 2 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं और लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। प्रधानमंत्री सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने श्री मोदी का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्घाटन सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा।
दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष G20 की अपनी अध्यक्षता में कई प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना तथा समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन शामिल है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक दृष्टिकोण से प्रेरित भारत की G20 अध्यक्षता को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक आदर्श के रूप में देखा गया। G20 की अपनी अध्यक्षता में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के प्राचीन दर्शन को केंद्र में रखकर अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों, मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया था। जोहान्सबर्ग से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए लोगों के कौशल और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में श्री सत्यसाई बाबा की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने साई कुलवंत हॉल में श्री सत्यसाई बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प ले कि हम उनके प्रेम और सेवा के संदेश को आत्मसात करेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे सभी प्रयास करेंगे जिससे विश्व में शांति को बल मिले और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो।
राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से 2047 तक भारत विकसित बन सकता है।
राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के अनुसार राष्ट्र निर्माण सभी संस्थाओं का कर्तव्य है। सत्य साई बाबा इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी संस्थाओं और नागरिकों को योगदान देना चाहिए।
इससे पहले पुट्टपर्थी पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्या ने कहा कि ये आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा।
भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे, पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहाँ से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है।
भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं के लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े पुराने कानूनों को कई आधुनिक प्रावधानों के साथ अपडेट किया गया है।
जो हमारी मांगें 100 साल में भी नहीं हो पाई और विश्व स्तर के जो मापदंड होने थे वो, उसके लिए ये नींव का पत्थर का काम करेगा। मैं और कंसेंट के 14 श्रमिक संगठनों की ओर से मैं NFI2 का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मंडाविया को, श्रमिकों को और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे आधी से अधिक जनता लाभान्वित होगी।
नई श्रम संहिताओं का स्वागत करते हुए नेस्कॉम ने कहा कि वो उद्योग जगत को इस बदलाव को आत्मविश्वास के साथ अपनाने में मदद करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा।
श्रम कानून 4 जो लागू किए हैं वो सरकार ने बड़े अच्छे किए हैं, वो लेबर के हित के लिए हैं। ऑल इंडिया CPWD MRM कर्मचारी संगठन जोनल सचिव राजकुमार सिंह चंडीगढ़, मैं इसके लिए सहमत हूँ। और जो ग्रेजुटी है और वर्करों को मिलेगी अपॉइंटमेंट लेटर ठेकेदार इशू करेगा और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत अच्छा किया गया है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अभियान में 10 अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की, जिनमें 5 तुर्की निर्मित और 3 चीन निर्मित हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में बताया कि ये गिरोह उच्च स्तरीय विदेशी पिस्तौलों की तस्करी के लिए पाकिस्तान से ड्रोन का इस्तेमाल करता था। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की क्षमता 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में इसकी भूमिका का विस्तार करने की योजना बना रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 78वें NCC दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये बात कही।
नेशनल कैडेट कोर को हम राष्ट्र विकास और राष्ट्र सुरक्षा में और अधिक योगदान देने के लिए, उनकी जो संख्या है वो 17 लाख से 20 लाख करने वाले हैं। उनको और अधिक स्किलिंग और दूसरे प्रोग्राम्स में शामिल करके उनका योगदान बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि NCC की उपस्थिति देश भर के 700 से अधिक जिलों में है और इसके 40% कैडेट महिलाएं हैं। उन्होंने कैडेटों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए साइबर जागरूकता और ड्रोन रोधी उपायों सहित आधुनिक तकनीक के महत्व पर बल दिया।
NCC के एक्सपेंशन के साथ साथ भी हमारा फोकस है जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया है उसे हम और बेहतर बना रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को NCC करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो साइबर इश्यूज हो या काउंटर ड्रोन मेजर्स हो, इसमें हम सेनाओं के साथ मिलकर अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए एशियाई और प्रशांत आपदा सूचना प्रबंधन विकास केंद्र APDIM और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आयोजित समावेशी आपदा जोखिम डेटा संचालन पर APDIM के 10वें सत्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्षेत्रीय आपदा के स्वरूप को देखते हुए लचीली कार्ययोजना और सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रेलवे ने इस वर्ष अब तक 1020 मिलियन टन माल का लदान पूरा कर लिया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इसमें कोयला का योगदान 500 मिलियन टन से ज्यादा है। ये पिछले वर्ष के 4.2 मिलियन टन से ज्यादा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सितारों की चमक बरकरार है। फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन भी फिल्म स्क्रीनिंग और मास्टर क्लासेस से लेकर उभरते फिल्मी सितारों के साथ विशेष बातचीत तक सिने प्रेमियों का मनोरंजन जारी है। एक रिपोर्ट।
एक विशेष मास्टर क्लास में प्रसिद्ध फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा ने जीवन, सिनेमा और कहानी की कला के बारे में बातचीत की। श्री चोपड़ा ने 1942 अ लव स्टोरी के 8K रेस्टोरेशन से लेकर अपनी पहली राष्ट्रीय पुरस्कार के किस्से साझा किए, खासकर तब जब वह युवा थे और आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहे थे। प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर इफ्फी में अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट के जरिए अभिनेता की कुर्सी के बजाय निर्देशक की कुर्सी में दिखे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह फिल्म कभी हार ना मानो के मंत्र से प्रेरित है, जिसने उनकी जिंदगी को एक अहम आकार दिया है।
मैं अपनी नीस को, जिसका नाम तन्वी है, मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मैंने ऐसी खुश मिजाज लड़की देखी नहीं है, और उससे पहले मैंने एक साल दिलखुश स्पेशल स्कूल में पढ़ाया। मुझे पता था कि मैं एक्टिंग करवा लूंगा।
वेनिस फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन विजेता, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर तथा इटालियन फिल्म मस्कीटोस से लेकर तेलुगु क्लासिक मलिश्वरी जैसी पसंदीदा फिल्में भी दिखाई गई, जिन्होंने दर्शकों का ध्यान बांधे रखा। आज करीब पूरे दिन 50 प्रशंसित और अपेक्षित फिल्में दिखाई जा रही है। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
फिल्म महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो देश भर के 16 राज्यों की लोक कला प्रस्तुतियां इफ्फी स्थल पर लेकर आया है। जम्मू कश्मीर सूचना जनसंपर्क निदेशालय भी फिल्म महोत्सव में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन और रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की बहनों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मुद्दों पर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ और तहरीक ए तहफुज आईन ए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची में प्रदर्शन किए। मीडिया खबरों के अनुसार कराची पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से रोकने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के फैसलाबाद फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। विस्फोट में 7 लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाका शहाब टाउन के कबड्डी स्टेडियम के पास चिपकाने वाले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री में हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिका की शांति योजना को अस्वीकार किया तो रूस की सेनाएं और आगे बढ़ेंगी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी चेतावनी दी है कि उनका देश अमेरिका की शांति योजना पर इसका समर्थन खोने का खतरा उठा रहा है। लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सेमीफाइनल में लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाओ टियन चेन को करीबी मुकाबले में 17-21, 24-22, 21-16 से पराजित किया। गुवाहाटी में भारत के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 3 विकेट पर 169 रन बना लिए हैं। आज दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया था। इधर नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार एट 150 एकता यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरदार पटेल की विरासत को सम्मान देने के लिए देश भर में कई आयोजन किए गए हैं।
जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सही मायने में सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि तभी है जब हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में अपनी जवानी खपा दें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि।
श्री नड्डा ने कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से 5 जुलूस सरदार पटेल के जन्म स्थान गुजरात के नडियाद में इकट्ठा होंगे। नडियाद से 10 दिन की पदयात्रा केवड़िया की ओर रवाना होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष मुद्दों पर भारत के विचार रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास के लिए लोगों से कौशल और शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों ने श्रम संहिताओं को सराहा, कहा ये संहिताएं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में 3 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।